శాంతి.
ఓం శాంతి.
मीठे मीठे बाप दादा ने हम सभी बच्चों को जो संगम युग पर मीठे मीठे बाप दादा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, तो कहने में हमारा ये छोटा सा परिवार है और हम सभी परिवार के सदस्य भले हम अपने अपने स्थानों पर रहते हैं, लेकिन आज जब हम सभी अपने प्यारे मीठे मधुबन के अंदर एकत्रित हुए हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चेहरा यहाँ पर मेरे लिए नया है. सभी चेहरे बिल्कुल बाप और दादा की तरह कल्प पहले वाले पुराने और जाने पहचाने और बाप दादा के संगी और साथी और युगल आपस में नहीं लेकिन शिव बाबा के सभी युगल कंबाइंड स्वरूप में आप सभी यहाँ पर विराजमान हो, दिखते हो और इसीलिए ये आत्मा अंदर से अति हर्षित हो रही है और मीठे मीठे बाबा की इतनी सारी युगलों को देखकर गदगदित होती है. कभी संसार के अंदर ऐसा सुना कि एक पति या एक पत्नी को अनेक पति हो, अनेक पत्नियां हो और उन सभी को पत्नियों की वृद्धि या पतियों की वृद्धि पर खुशी, अति खुशी और बढ़ती जावे ऐसी खुशी की वृद्धि उनके चेहरे पर हर्षित मुक्ता की तरह दिखाई पड़े. आप सभी को बाबा की युगलें बढ़ते जाते हैं तो उसकी खुशी हो रही है ना? हाँ, आप सभी को अंदर में खुद को भी आता है कि हम इसको बाबा का परिचय दे करके वारिस तो बनाएं, लेकिन ये परमेश्वर को अपना पति बना ले. मेरे ख्याल से ये शुभ भावना सभी यहाँ विराजमान बाबा के कंबाइंड स्वरूप युगल मूरत जो भी शिव बाबा की युगलें आप सब बैठे हो, इन सभी के हृदय में होगी. है ना, सभी के दिल में ये भावना पक्का. समझी मेरी बात कि शिव बाबा की सभी युगल बने, चाहे पुरुष हैं, भाई हैं, पति हैं, तो वो ये सोचेंगे कि पत्नियां इतनी तैयार हो और अगर बहनें हैं, पत्नियां बैठी हैं, तो वो ये सोचेंगी कि इतने सारे शिव बाबा के युगल बने. अभी समझी सबने बातें? पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं. पीछे वाले भी ध्यान से सुने। मेरे ख्याल से अभी तो सभी आप रिफ्रेश होकर के आए हैं, दोपहर की थोड़ी रेस्ट भी की है और चाय पीने वालों ने, कॉफी पीने वालों ने सभी कुछ ना कुछ पीकर थोड़ा बहुत मुंह में चखा चुखी करके रिफ्रेश होते आए हैं। पक्की बात, सभी रिफ्रेश बैठे हो ना? क्योंकि क्या है, ये हमारा मधुबन है ना, एक तो है शांतिवन में, तो शांतिवन में जब हम बैठते हैं तो हमें यहाँ पर इतना अच्छा शांति का अनुभव आता है और उसमें भी आराम से बैठे हैं। सोफा पर बैठने वालों को तो विशेष आराम आता है क्योंकि पीछे सिर टिकाने को भी अच्छी जगह है। थोड़ा लंबा हो जाए तो जैसे आराम कुर्सी पर बैठे हों, और कुर्सी पर बैठे हुए भी सोचेंगे हम बड़े आराम से बैठे हैं, और पीछे वालों का तो कहना ही क्या, वो तो सोचेंगे यहाँ तक कहाँ नजर जाने वाली है, और नजर जाएगी भी तो पहचानेंगे थोड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा ने हम लोगों के अंदर बहुत सारी विशेषताएं भरी है, तो ये भी एक विशेषता बाबा ने भरी है। और उस विशेषता में एक मुख्य विशेषता आपको बता दूं जो मेरे अंदर बाबा ने डाली है, अभी वो कमजोरी है या विशेषता है वो निर्णय आप लोग लेना। ऐसा है, यदि आप लोगों में से कोई भी शांति धाम में जाएंगे शांति लेने के लिए, बैठे हो शांति धाम में परंतु यहाँ माया निंद्रा देवी थोड़ा शांति कर देती है, तो फिर शांति धाम जो अपना निंद्रा का स्थान है तो वहां जाने को मन करता है, तो फिर कोई कोई को थोड़ी सी नींद आती है, हल्का सा झुटका भी आ जाता है, तो तुरंत मेरे पास वो वाइब्रेशन आता है और मैं पॉइंट भूल जाती हूँ कि मैं आपको क्या बताने जा रही थी। तो ये निशानी है, यहाँ पर कोई भी पीछे भी बैठे होंगे ना तो सीधा देखो, अव्यक्त बाप दादा हमें मिलने आते हैं, हम सभी कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ के भाग भाग करके उड़ करके और यहाँ बाप दादा के सन्मुख आकर उपस्थित होते हैं। बाप दादा हम बच्चों को सभी को दृष्टि देते हैं, मुझे कई बहनें, कई भाई, कई माताएं, कई हमारे अधर कुमार इतना अच्छा खुशी खुशी से ये समाचार सुनाते हैं। जब हम उनको पूछते हैं कि बाप दादा से मधुर मिलन मुलाकात करके आए, कहते अरे दीदी बात मत पूछो, मुझे तो एकदम बीच में जगह मिली, इतना दूर था, लेकिन जब बाबा आए तो बराबर बाबा की दृष्टि की किरण जो थी ना वो मेरे पर ही थी, और मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे लिए ही आ जाया है, बस मैं और बाबा। तो बाबा अनुभव कराते हैं, तो ये संगम की विशेषता है, और ऐसी विशेषताएं अनेका अनेक हमें तभी प्राप्ति होती है उसकी, जब हम पुरुषार्थी से तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। एक है, जैसे हमको बाबा ने सहज योग सिखलाया, ऐसे एक है हमारा सहज पुरुषार्थ। सहज माना जिसमें कोई मेहनत न करनी पड़े। जैसे भक्ति मार्ग में कई किसी प्राप्ति के लिए, किसी सिद्धि के लिए कोई ना कोई परहेज ले लेते हैं, या बाधा बोलते हैं ना, बाधा ले लेते हैं कि भाई अभी हम जब तक हमारा ये कार्य सिद्ध न हो तब तक मैं मिष्ठान नहीं खाऊंगी न खाऊंगा, जब तक मेरी ये उपलब्धि नहीं होगी तब तक मैं ये कार्य करता रहूंगा या करती रहूंगी, तो कोई ना कोई बाधा लेते हैं। परंतु कई ऐसी भी बाधा लेते हैं, मैं चावल नहीं खाऊंगी, मैं श्रीखंड नहीं खाऊंगी, मैं जलेबी नहीं खाऊंगी, मैं आम नहीं खाऊंगी। जिसको जो चीज बहुत पसंद होती है ना, उस चीज का त्याग करते हैं और उसकी प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु के आगे। परंतु कई जो होते हैं ना, सहज प्रतिज्ञा करने वाले होते हैं और सहज प्राप्ति करने वाले होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, चावल खाते ही नहीं तो कहते हैं मैं चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अब जब खाते ही नहीं तो उनको मेहनत नहीं, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ पर भी बाबा के कई बच्चे ऐसे हैं जो सहज पुरुषार्थी हैं, जो अमृत वेले वैसे भी रोज उठते हैं, वो कहते हैं मैंने तो पक्की प्रतिज्ञा की है बाबा के पास, मैं तो रोज अमृत वेले उठकर ये आत्मा बाबा को याद करेगी। तो ये सहज पुरुषार्थ है क्योंकि उनके लिए मेहनत नहीं है। परंतु जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहेगा वो पहले सहज से पुरुषार्थ के ऊपर आएगा, मेहनत करने पर आएगा। पहले वो मेहनत करेगा, क्या मेहनत करेगा, उससे उठा नहीं जाता है सुबह में, रात को सोते भी देरी हो जाती है, सारा दिन भी काम करते हैं तो सोने के लिए या विश्राम करने के लिए दिन में समय नहीं मिलता है, तो इसीलिए उनका उठना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ होती है कसौटी कि बाबा से मेरा प्यार कितना है। अगर ऐसे समय पर कोई ये कहे बहुत थके हुए हैं, रात को भी देरी से सोए, दिन में भी आराम नहीं मिला, परंतु यदि ये कहा जाए कि आपको इतने रुपए हीरा या सोना देने के लिए कोई सुबह सुबह 3 बजे आएंगे और आपको उनसे कलेक्ट करना है, लेना है, तो क्या करेंगे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हाँ उठेंगे या सोएंगे, बताइए, उठ जाएंगे। क्यों, प्राप्ति है, सोना मिलेगा, पैसा मिलेगा, हीरा मिलेगा, तो उठ जाएंगे। तो बाबा से भी हमें प्राप्ति हो रही है। तो एक बाजू है प्यार, प्रभु के प्रति प्यार और उसके साथ प्राप्ति, और दूसरी तरफ है माया की प्राप्ति, माया के वशीभूत मेरे जो पुराने संस्कार पड़े हैं, वो पुराना संस्कार निंद्रा का, आलस्य का, अलबेलेपन का, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे उठने नहीं देगा, तो ये हमारे लिए कसौटी हो जाती है। अब एक दो दिन तो कोई भी उठ लेगा, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारे लिए ही अमृत वेले रोज इंतजार करके वतन में बैठता हूँ, और मैंने स्पेशल तुम बच्चों के लिए ये समय रखा है, तो सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। अब जिनका प्यार है, जिनका निश्चय है, जिनको पाना है, वो तो क्या करते हैं, कुछ भी हो जाए वो उठेंगे जरूर, और उठ करके प्राप्ति करने का योग जो लगाना है वो योग लगाएंगे, बाप दादा से मधुर मंगल मिलन भी मनाएंगे और अपने पुरुषार्थ को सार्थक भी करेंगे। भले फिर उसमें भी कई प्रकार हैं, कई प्रैक्टिकल उठते हैं, कई उठ करके भी नहीं उठते हैं। उठ करके कौन नहीं उठता है? जो उठे तो सही, परंतु कैसे भी करके रिफ्रेश होके के ना हुए जाके वहां बैठ जाते हैं, बाबा के सामने जाके बैठ जाते हैं और बाबा को कहेंगे, बाबा मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, थकी हुई आत्मा हूँ, मैं अमृत वेले आपने कहा है इसलिए उठ करके आई हूँ, गुड मॉर्निंग। बाबा नींद बहुत आती है और गुड मॉर्निंग करके जाके अपने कमरे में, जैसे बाबा ने भी गुड मॉर्निंग कर लिया, बाबा ने भी छुट्टी दे दी, भले मीठे बच्चे जाके सो जाओ, जाके सो जाते हैं। कई तो बिस्तर से उठते ही नहीं, बाबा तो कहते ना सोए सोए भी याद करो, तो बिस्तर पे सोए सोए अलार्म बजा, अलार्म बंद किया और बाबा को याद किया, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग। पर बाबा मैं ना बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, आज मैं उठ के बैठ नहीं सकती हूँ, मैं सोए सोए याद करती हूँ। और एक सेकंड में ये बोलने के बाद सचमुच ही वो कहाँ चली जाती है आत्मा? वापस अपने शांति धाम, परम धाम। क्योंकि बाबा तो वहां मिलेगा ना, बाबा तो शांति धाम में रहते हैं, बाबा तो परम धाम निवासी है, तो खुद भी वहां चले जाते हैं। तो ये सहज पुरुषार्थ भी नहीं, ये पुरुषार्थ भी नहीं, लेकिन इसको क्या कहना वो आप खुद सोच लो। परंतु पुरुषार्थ माना पुरुष और प्रकृति, ये दो शब्द आत्मा और शरीर के लिए आध्यात्मिक शब्द हैं, धार्मिक शब्द हैं। तो पुरुष है आत्मा, प्रकृति है शरीर। प्रकृति विनाशी, पुरुष आत्मा अविनाशी। अब जब आत्मा पुरुषार्थ करेगी, यानी अपने अर्थ स्वयं के लिए पुरुषार्थ करेगी, तो उसको कैसा पुरुषार्थ करना पड़े? अविनाशी। अब वो अविनाशी पुरुषार्थ कब कर सके? जब बाप दादा के वचनानुसार, महावाक्यों के अनुरूप, श्रीमत के अनुरूप वह अशरीरी बनने का अभ्यास करे, देही अभिमानी स्थिति में बैठकर और बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करे। जब वो सचमुच ही उस मेहनत में इतना खो जाए कि उसकी नींद उड़ जाए, उसका आलस्य खत्म हो जाए, उसका अलबेलापन भी समाप्त हो जाए और वह आत्मा, वह पुरुष प्रकृति को भूलकर, जो विनाशी है उसको भूलकर, बस मैं और मेरा बाबा, ऐसे जब याद में उसकी याद की, प्यार की लगन के अंदर मग्न हो जाए, उसके प्यार में खो जाए, उससे बातें करने में उसे समय का भी पता न चले कि कितना समय मैं आत्मा उसको याद करने बैठी, अचानक जब आंख ऊपर के स्थिति से नीचे आवे तब उसको समझ में आवे कि अरे मैं तो सिर्फ आधा घंटे के लिए ये आत्मा बैठी थी और एक घंटा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये है पुरुषार्थ। और फिर आगे आता है तीव्र पुरुषार्थ। अब अभी तो ये एक ही बात मैं सुना रही हूँ अमृत वेले की। और तीव्र पुरुषार्थ में बाबा कहते हैं, योग जब विधि पूर्वक किया जाता है तो सिद्धियां प्राप्त तो होती है, एक है योग का कर्म किया, राज योग किया और उसका फल मिला। परंतु जब विधि पूर्वक राज योग किया तपस्या के रूप में, तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि माना क्या? भक्ति मार्ग में आप लोगों ने बहुत सिद्ध महात्माओं को देखा होगा। सिद्धियों को प्राप्त ऐसी महान आत्माओं को देखा होगा, जो बहुत सारे चमत्कार करके और लोगों को प्रभावित करते हैं, प्रभु की ओर नहीं ले जाते, उनको अपनी ओर खींचते हैं। जो उनसे बहुत बड़ी गलती होती है, और ये बहुत गलत विधि है कि परमात्मा के नाम पर चमत्कार दिखाकर और अपनी ओर आकर्षित करना, इसीलिए उनका वह कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं कहलाता। लेकिन हम बच्चे यदि तपस्या के स्वरूप में बाबा को याद करें, तपस्या में शब्द आता है तप, हम याद में तप करें, तप को उल्टा करो तो पत, मेरी पत रखना भगवान, अर्थात मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना। तो जब हम प्रभु की लाज रखते हैं, प्रभु की लाज कैसे रखी जाती है? उसकी श्रीमत का पालन करके, जितना हम उनकी श्रीमत का पालन करते हैं उतना हम उनकी लाज रखते हैं। सुन रहे हैं? तो हमें तपस्या करनी होती है। अब जब तपस्या करनी होती है तो तपस्या में समय की गिनती नहीं होती, लेकिन समय से कदम हमें आगे बढ़ाने होते हैं, समय के साथ भी कदम नहीं मिलाने होते हैं, लेकिन समय से पहले हम खड़े हों और समय का हम स्वागत करें। अभी तो हमें समय बार बार याद दिलाता है, समय हमें कहता है कि बाकी थोड़ा सा समय हूं मैं, फिर इस सृष्टि के ऊपर विनाश होगा और फिर नई दुनिया, जिसके लिए आप सभी इतने तैयार हुए हो, वो दुनिया आएगी। तो आप सभी ने भी तप किया है। कौन सा तप किया? बड़ा भारी तप किया है। असंभव बात को आपने संभव किया है, जिसको ऋषियों ने, मुनियों ने, अरे शास्त्रों के अंदर भी जो बात बताई गई, उस बात को आपने खंडित करके और सभी ऋषि मुनि शास्त्र लिखने वाले सभी को आपने गलत सिद्ध किया, और बाप को आपने सच्चा सिद्ध किया। कैसे? वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे, ना है अभी भी, कि कभी अग्नि और कपूस इकट्ठा रह सकते हैं, युगल मुहूर्त में इकट्ठे रहें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ये उनके मानने में भी नहीं आता है। परंतु वाह बाबा के युगल बच्चे, वाह! वाह बाबा के आप सिकी लदे लाडले बच्चे, वाह! क्योंकि आप लोगों ने ये बात प्रैक्टिकल में, ऐसे नहीं खाली मुख से कहते हो लेकिन प्रैक्टिकल में सिद्ध करके बताई कि यदि हम श्रीमत के अनुरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर और देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और अपनी रूहानी वृत्ति के साथ अपनी दृष्टि कृति और प्रवृत्ति रखते हैं तो ये कर्म बड़ा आसान है। और ही मैं देखती हूँ कभी कभी ब्राह्मणों के मैंने जो अनुभव सुने हैं उसमें 80% ऐसे ही मुझे ब्राह्मण मिले हैं जिनों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु क्रोध को जीतना वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य व्रत तो उनका ऐसे सहज धारण हो गया जैसे कि वो पहले से ही इन संस्कारों में चले हुए हैं। और प्रैक्टिकल है भी ऐसा, हम जो पावन देवी देवताएं थे जो, तो इसीलिए वो संस्कार हमारा जल्दी बन जाता है, तो बाबा की पत जल्दी रखते हैं इन बातों में, बाबा की लाज भी रखते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और चौथा सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट विषय हम बच्चों को सिखाया। अब हमें चारों ही विषय में तीव्र पुरुषार्थ करना है, समय से पहले निकलना है। हम कई बार बाबा को सुन चुके हैं, बाबा हमें हमेशा पूछते हैं कि कर्मातीत स्थिति कितने समय में बनाओगे, कभी तैयार होगे, डेट बताओ, यानी वो समय बताओ, 1 बरस का समय, 2 बरस का समय, 4 बरस का समय, 5 बरस का समय, हम नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि प्रभु जो हमें कहते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, हम तुरंत उसका पालन कर नहीं पाते हैं, तो हमें स्वयं में विश्वास कम है, आत्मविश्वास कम है, और हमने ऐसा लक्ष्य भी निश्चित नहीं किया है कि इतने समय में मैं बाबा के कहने प्रमाण स्वयं को तैयार करूंगी। किसी भी मंजिल पर जब पहुंचना होता है तो पहले हम लक्ष्य निश्चित करते हैं कि मुझे फलानी मंजिल तक पहुंचना है, और वो मेरी मंजिल क्या है, कैसी है, और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी सोचते हैं कि मुझे क्या क्या लक्षण अपनाने होंगे। फिर ये भी सोचते हैं कि लक्षणों को जब हम धारण करके और राह पर चलना शुरू करेंगे तो अनेक मंजिल और मेरे राह में मेरे पुरुषार्थ के बीच में कई विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, तो मैं अपने को भी इतना तैयार करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, लक्ष्य लक्षण अब आया आत्मविश्वास और प्रभु में विश्वास, निश्चय बुद्धि, स्वयं में भी निश्चय, स्वयं के निर्णय में, जो मैंने जिस मंजिल पर पहुंचने का निर्णय लिया उसमें मेरा निश्चय, तो जो निशाना मैंने सोचा उस निशाने के साथ मेरा निश्चय होना आवश्यक है। सिर्फ स्वयं में निश्चय हो इतना ही नहीं, लेकिन स्वयं में निश्चय इसलिए नहीं होता कि आत्मा अपने को इतना समर्थ महसूस नहीं करती। स्वयं को हम कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करते हैं, और वो हमारी कमजोरी, फिर चाहे वो अवगुणों की हो, चाहे किसी आदतों की हो, किसी व्यसनों की हो, फिर व्यसन स्थूल भी हो चाहे सूक्ष्म भी हो, आदत भी स्थूल भी हो चाहे सूक्ष्म भी हो, या फिर किसी भी विषय विकार में से कोई भी एक विकार मेरे अंदर ऐसा प्रबल रूप में हो जो मैं अपने आप में विश्वास नहीं कर सकती कि मेरा त्याग इस बात से सहज होगा। सहज तो क्या, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी पता नहीं मैं उसमें विजयी रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो खुद को ही खुद में संशय, और आत्मा फिर उस समय उसको याद दिलाती है कि सर्वशक्तिमान बाप तेरा साथी है, तू हिम्मत रख। बाबा भी कहते हैं रोज रोज मुरली में कि मीठे बच्चे तुम्हारा एक कदम, जब हम ज्ञान में आए तभी बाबा हमें कहते थे तुम्हारा एक कदम हिम्मत का मदद के मेरे 10 कदम। फिर बाबा ने थोड़ी मदद बढ़ा दी बच्चों की हिम्मत देख करके, फिर कहा 100 कदम, फिर देखा अभी और कमजोर आत्माएं आ रही हैं तो उनको और मदद ज्यादा देनी पड़ेगी, तो फिर बोला 1000 गुना बाप तुम्हें मदद करेगा। और अभी तो बाबा क्या कहते हैं, हिम्मत तुम्हारी पद्मा पद्म गुनी मदद बाप की। और उससे भी आगे बढ़कर अभी तो बाबा ने और भी सहज कर दिया, इतना सहज कर दिया, बाबा कहते हैं जब भी कोई तकलीफ आवे, समस्या आवे, विघ्न आवे, आप गूंज जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, घबरा जाओ, ना हिम्मत हो जाओ, अपने में अपने को शक्तिहीन महसूस करो, तभी क्या करो। 2 शब्द बाबा ने बताए मदद के लिए, बाबा ने सिर्फ 2 शब्द बताए हैं। कौन से हैं वो 2 शब्द? देखो सभी को पता है, पद्मा पद्म गुना भी छोड़ो, सिर्फ बाबा कहते दिल से कहो मेरा बाबा। तो कितना सहज हो गया, क्योंकि बाबा शब्द में बड़ा जादू भरा हुआ है। जिस जादू को हमें पहचानना है, ये वो जादू भरा शब्द है कि शब्द बोलने से पूर्व ही मेरा बाबा बोले, दिल से निकले और उसकी दिल तक पहुंचे, वो समय भी बाबा नहीं देता। हम जो ही सोचते हैं कि मैं मेरे बाबा को याद करूं, मेरा बाबा कहकर बाबा हमारे सामने मुस्कुराता हुआ उपस्थित हो जाता है। अरे हमारे भाई बहने तो कभी इतने वंडरफुल अनुभव सुनाते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो और ही ये सोच रही थी या सोच रहा था कि ये कैसे होगा। बाबा की कई पॉइंट्स याद आती थी अच्छी अच्छी, बच्चे हिम्मत रखो, बच्चे ये करो, बच्चे वो करो, परंतु फिर भी मुझे आता था कैसे होगा। लेकिन जब मैं वो कार्य करने के स्थान पर पहुंचा या उस घड़ी पर उपस्थित हुआ, कार्य तो हुआ पड़ा है। हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन वहां तो हुआ ही है, तो दिल से आत्मा गदगद हो जाती है कि वाह मेरे बाबा वाह। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अवश्य ऐसे अद्भुत अनुभव कभी ना कभी तो छोटे बड़े हुए ही होंगे। जिनको ये अनुभव नहीं हुआ है वो हाथ उठावे, कोई नहीं। वाह 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 वाह। तो हम सभी को छोटी छोटी बातों में, जिनको बाबा से सब कुछ लेना आता है, हक से, अधिकार से, थोड़ा आज की भाषा में कहूं तो बाबा खुद भी कहते हैं मैं आया हूं मेरी मदद लो, यानी मुझे यूज करो। तो कई बच्चों को बराबर बाबा से मदद लेना आता है, हंस हंस के, मीठी मीठी बातें करके, भोलापन दिखा करके, और ऐसे बाबा से मदद ले लेते हैं। सुनने वाले को ऐसे लगता है बाबा इसको कितनी मदद करता है, मुझे तो ऐसी मदद मिलती नहीं है। उसको ईर्ष्या हो जाती है अंदर में कि उसको ऐसी मदद कैसे मिलती है। मैंने भी तो ऐसे प्रसंग के समय बाबा को, इसने तो 2 मिनट भी याद नहीं किया, उसका कार्य हो गया, और मैंने तो 2 बरस से मैं तपस्या कर रहा हूं, कर रही हूं, मुझे तो कोई मदद ही नहीं मिल रही है बाबा की, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कारण क्या है, यदि उनको हम ये कहें कि तुमने दिल से मेरा बाबा नहीं कहा तो आपको कबूल होगा? ये कबूल होगा? नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों को कहूं आप बाबा को नहीं चाहते हो, आप दिल से मेरा बाबा नहीं कहते हो, बाबा से आपको प्यार नहीं है, तो आप मानेंगे मेरी बात? नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सभी का ये दावा है कि हम बच्चे बाबा को प्यार करते हैं। हम सभी का बाबा से बहुत प्यार है, और प्यार है इसलिए मधुबन ने बुलाया, अर्थात मीठे मीठे बाप दादा ने बुलाया, और क्या हुआ, आप सभी यहाँ पहुंच गए। तुमने पुकारा और हम चले आए, तो यही तो प्यार का सबूत है। तो छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे प्यार के सबूत भी बहुत देते हैं। अब हमें एक सबूत बड़े से बड़ा देना है, डिटेल में नहीं जाती हूँ, चारों ही सब्जेक्ट को लेकर के समय को पहचानते हुए, समय को परखते हुए, और किसी को भी न देखते हुए, अब हमें समय से भी पहले आगे बढ़ना है। सिर्फ हमें बाबा को देखना है कि बाबा अभी हम बच्चों से क्या चाहते हैं। एक ही चाह में सारी राहें हैं और एक ही बाबा की चाह में सब कुछ, जो भी बाबा चाहते हैं वो हम सब कुछ करके बाबा को दे सकते हैं और दिखा सकते हैं। और वो बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बाहें पसार के खड़ा हूँ। तो बाबा क्यों खड़े हैं, बाहें पसार के खड़े क्यों हैं? जब संगम युग में साकार बाबा मुरली सुनाते थे, हम कल्प वृक्ष पर समझाते हैं, तो बाबा भी तपस्या कर रहा है। लेकिन अभी बाबा के जितने भी चित्र आप देखेंगे, वो बैठा हुआ बाबा नहीं, लेकिन फरिश्ता बाबा। तो वतन से बाबा हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी आओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बच्चे भी यही कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी दुनिया आवे। कौन सी दुनिया? नई दुनिया। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि ये दुनिया अच्छी लग रही है? यहाँ जिनको रहने की दिलो, मधुबन की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें तो आप सभी हाथ उठाएंगे, परंतु जिनको ये पुरानी दुनिया में रहने की दिल है, सच्ची दिल से बोलना, जिनको यहाँ रहने की दिल है वो हाथ उठाए। देखो धीरे धीरे हाथ उठ रहा है। शायद उनके दिल में ये होगा कि हम अगर यहाँ होंगे तो हम प्रभु से प्राप्त या करते रहेंगे, प्रभु से हम जुदा नहीं हो, क्योंकि नई दुनिया में तो बाबा नहीं होगा। हाँ, नई दुनिया में होंगे बाबा? नहीं होंगे। तो शायद इसीलिए सोचते होंगे, एकाद ने हाथ उठाया। तो हम भी नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, और बाबा भी चाहते हैं कि बच्चे जल्दी मेरे पास वतन में आवे। तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? एक ही तीव्र पुरुषार्थ जिसमें चारों सब्जेक्ट आ जाती हैं, वो है कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ। साक्षी दृष्टा भव, साक्षी स्वरूप में स्थित हो करके, देही अभिमानी हो करके हर कर्म को करना, जिसमें हम न्यारे भी रहेंगे और हम बाबा के प्यारे भी बनेंगे, अर्थात वतन में भी जाएंगे। आज आप लोगों ने जो धारणाएं की वो कब कर सके? जब आप अपने जो कायदे मुजब का पति पत्नी का जो संबंध था, उस संबंध से विस्मृत होकर आप एक न्यारे संबंध में बंधे। अगर वो न्यारा संबंध आप नहीं बांधते, यदि आप उस संबंध से न्यारे नहीं बनते, तो क्या ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन आप प्रभु के प्यारे कब बने? जब प्रभु की श्रीमत पर आप इस देह से न्यारे बने, अपनी वृत्ति को भी देह से न्यारी बनाई, तो आपकी दृष्टि में भी परिवर्तन आया, वृत्ति में परिवर्तन आया, दृष्टि में परिवर्तन आया, कृति में भी परिवर्तन आया, वाणी में भी परिवर्तन आया और प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया। जब इन सभी बातों में आपने परिवर्तन लाया, अर्थात उनसे आप अलग हुए, जो आप पति पत्नी के संबंध में जो एक्टिविटी, जिस वृत्ति से, जिस विचारों से, जिस ख्यालातों से, जिस संबंध और स्नेह से कर रहे थे, वो करना आपने परिवर्तन किया, खत्म नहीं कर दिया। ऐसे नहीं कि पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं, परिचय तो यही देना होगा कि ये मेरे लौकिक पति हैं, ये मेरी लौकिक पत्नी है। कभी आप अपने मित्र संबंधी जो ज्ञान में नहीं, उनको कहेंगे क्या ये मेरी बहन है? और वो कहेगी क्या कि ये मेरा भाई है? कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी में जाके खिसक गया है इसका। करेंगे ये गलती? कभी नहीं करेंगे। तो ये गलती हम नहीं करते। हम लौकिक माता पिता के लिए भी बोलते हैं कि हमारी लौकिक माँ है, लौकिक पिता है, परंतु आप जब अपना परिचय देंगे दूसरों को, तो आप यही कहेंगे मेरे लौकिक पति हैं, लौकिक पत्नी है। फिर आप कहो भले हम दोनों बाबा के बच्चे हैं, समझदार होगा तो समझ जाएगा। जब एक बाप के बच्चे हो तो ये तो कभी कोई सोचेगा ही नहीं कि ये बाप के दोनों बच्चे हैं तो ये भाई बहन है। और वंडरफुल बात मुझे कभी कभी ये भी लगती थी कि जब भक्ति मार्ग में मंदिर में जाते थे, आप सभी मंदिर में गए होंगे, सब मंदिर में गए, जो गए हैं वो हाथ उठाओ, 99% गए हैं। मंदिर में जाके भी प्रभु के आगे कहा, पतियों को पहले पूछती हूँ, मतलब मेरे मीठे मीठे जो विजयी रत्न हैं, उन भाइयों को पूछती हूँ, आपने प्रभु को कहा कि तुम माता पिता हम बालक तेरे? कहा? सभी ने कहा, जिसने नहीं कहा वो हाथ उठाओ, सबने कहा। अभी मैं हमारी मीठी मीठी बहनों को, भोली भाली बाबा की बच्चियों को, उनको पूछती हूँ, आप भी मंदिर में गई, आपने भी प्रभु को कहा कि तू माता तू पिता मैं तेरी बच्ची? जिन्होंने नहीं कहा वो हाथ उठावे। कहा, लेकिन आप दोनों ने झूठ बोला, आपने भी झूठ बोली, आपने भी झूठ बोला, इसीलिए प्राप्ति नहीं हुई। क्या झूठ बोला मालूम है आप लोगों को? अगर पति कहता है तू मात पिता मैं बालक तेरा, तो पत्नी का वो माता पिता क्या हो गया? क्या हो गया? सास और ससुर। आपने कभी कहा बहनों ने कि तुम सास ससुर मैं बहू तेरी? बोला? और कभी आप लोगों ने कहा कि तुम मात पिता मैं जमाई तेरा? कभी भी नहीं बोला। दोनों ने झूठ बोली भगवान के आगे। झूठ भी एक दो में बोले तो ठीक है, दूसरे मनुष्यों के आगे बोले तो ठीक है। जो सत्य परमात्मा है, जो कहता है झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलोगे तो सजा मिलेगी, उसके आगे ही झूठ बोली कि तू मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने ऐसे मीठे मीठे भोले भाले बच्चों को देखा। अभी दादी जी हमारी प्रिय, अति प्रिय, प्राण प्रिय, हाँ दुनिया में सातवां वंडर नहीं आठवां वंडर, जानकी दादी जी पधारी हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। टाइम कहाँ है? टाइम
युगल आए हुए हैं सारे भारत के और नेपाल के।
सुनो यहाँ जो हरी सेवा क्या होती है, जो बच्चियाँ चल रही है, त्याग वैराग आज आज जो मैं कल की बोली पढ़ी उसमें बाबा जसन रहे न, उसमें बाबा ने मेरा अपना बने भी और मेरा भी दिया। क्यों जैसे जिस दिन बाबा समर्पण हुआ उसी गिरी में भी दुनिया न्यारी हो गई। और बाबा उन दिनों में कैसी बाबा की स्थिति थी, भक्ति पूरी हो गई, ज्ञान
समझ में आ रहा है सबको कि दादी जी ने कहा त्याग तपस्या और सेवा, जैसे साकार बाबा समर्पण हुआ मैं भी उसी घड़ी आई और मेरी भी भक्ति पूरी हुई और भक्ति का फल मिला।
जब बंधन में आई थी रही थी तभी क्या सफल होती थी, आज मैं लंदन जा रही हूँ।
मैं लंदन से आई थी, जब लंदन गई थी तब लंदन क्या था और अभी मैं फिर लंदन जा रही हूँ।
आज रात तो, रात तक प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ से सबसे मिलन में मिल।
तो अनायासी आप सबसे आज मिलने के लिए आ गई हूँ।
तो आज के मूल्य अनुसार मैं अपना भी परिचय बाबा का परिचय, तभी बाबा का पहला पहला यहाँ बॉम्बे में नलनी पहला बार तो अभी आया है।
बॉम्बे में पहले पहले नलनी बहन बाबा के पास आई।
कैसे है तो किसने बताया मैं जा रही हूँ? ये भी बोला मुझे मुझे बता रही था आज शाम को सब नहीं थे, सब बच्चियाँ थे, पता नहीं बातों के, पर अभी सारी रचना में बाबा की निमित्त विदेश के लिए भी शुरू बाबा ने मेरे को अव्यक्त होने के बाद सेवा भारत में वही ज्ञान प्रदेश में गई। तो अब कुछ समय बाबा के होते बाबा ये क्या है बाबा ये बना बाबा ने बनाया था
हिस्ट्री हॉल बाबा ने बनाया था और बाबा के अव्यक्त होने के बाद भारत में और विदेश में बहुत सेवाएं हुई।
आज अभी आने समय मैंने कहा ये बताएंगी, मैं अभी लंदन में भी गई,
कल बॉम्बे जा रही हूँ।
पर आज सुबह को भाषण दे रही हूँ।
दादी जी कल बॉम्बे जा रहे हैं और आप सबको भाषण देने के लिए विशेष आप सबके पास आए हैं।
बॉम्बे में कितने दिन रहेंगे? तो जो सुबह अभी नहीं फिर भी जब मैं पहले दिन में आई तो ये भी बॉम्बे में पहले मेरे साथ विदेश से पुरानी अन्य औरतों से भैया है, ये कैसे आ गई?
पहले पहले बॉम्बे में ये मिली, बाबा की बड़ी अनन्य है, पर ये यहाँ आज कैसे आ गई है नलनी दीदी? दादी युगलों की बच्ची, टीचर्स की बच्ची है ना, तो बट्टी कराने आई है।
तो अभी क्या है, तो लंदन में जाने के कैसे जयंती को बुलाया, मैं मेरे
दादी जी हम सभी को वरदानी दृष्टि दे रहे हैं, सब बैठ जाएं।
जो भी पीछे खड़े हैं कृपया पीछे वालों को नहीं दिखाई दे रहा है, बैठ जाएं सभी। दादी कह रही है बाबा अव्यक्त हुआ, अव्यक्त होने के बाद की आप सब अव्यक्त बाबा की रचना बहुत शक्तिशाली और वरदानी रचना है। दादी जी कह रही मैं आज पहली बार आप सबसे यहाँ मिल रही हूँ।
पूरे 10 मिनट शांत
करो
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक बाबा, दूसरा मैं आत्मा, आत्मा उनमें भी पूरे 84 जन्म बाबा के संग जन्म लिए, तो अभी भी बाबा के तो नवे बाबा के 98 10 और बिठाया है यहाँ। इतनी सब पालना की वृद्धि कितनी हुई है, मंदिर अभी बॉम्बे से आज
अभी 10 मिनट सभी साइलेंस में बाबा की याद में बैठेंगे, दादी जी योग कराएंगे।
सबको लूट।